zusammenstoßen. Ja, von Lohne und Silonkia. इस श्लोक में सत्संग की बड़ी भारी महिमा बतलाई गई और उसमें सत्संग में भी गोपी भाव की सुखिद्र श्रद्धाई प्रभाव भी इसमें दिखाया। गोपी भाव का इतना अधिक तीव्र प्रभाव है कि यदि किसी व्यक्ति में वो हो और उसका संग कोई यदि करे तो या गोपियों का यदि संग यदि मिल जाए तो अत्रैव परमोत्कर्ष श्रृंगारस्य प्रतिष्ठिता की एक तो उदाहरण नहीं सतसहस्त्र उदाहरण इसके हैं कि गोपियों के संग को पाकर जैसी जो उसी जन्म में या दूसरे जन्म में उस लीला में प्रविष्ट हो और इस श्लोक में दिया गया जो कुछ लोग ये कहते हैं कि जीव गोस्वामी स्वकीय भावना के पोषक थे और भागवत में स्वकीय का ही वर्णन किया गया है उसमें परकीय भाव का नहीं भाव है। उसके लिए इस श्लोक में स्पष्ट रूप से मत कामा रमण जा ये तीन होती है जा भाव का यही भाव अपना पति नहीं होने पर भी कोई लुक छिप कर कृष्ण से उतर पर पति से अपना पति रहते हुए भी दूसरे से पति भागवत इसी के ही पोषक और यही भागवत की भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। जीव गोस्वामी ने देखा कि कृष्ण का तो पर कोई है ही नहीं जितनी शक्तियां हैं अपनी अपनी जुड़ावनी शक्ति योग माया के प्रभाव से उन्होंने गोपियों और कृष्ण दोनों ने भी ऐसा भाव धरा है लाया है। इस भाव को पोषण करने के लिए कृष्ण का सचमुच में कोई पद नहीं और गोपियों के कोई दूसरे पति भी नहीं कृष्ण ही एकमात्र पति तभी पर इस प्रकट लीला और प्रकट दोनों लीलाओं में यह भाव मौजूद यदि नहीं है तो उनमें यह कमी हो गई कृष्ण और कृष्ण धाम में लीलाएं पूरी नहीं है ऐसा मानना पड़ेगा लीला पूर्ण नहीं किंतु लीला तो पूर्ण है। इसलिए यदि ऐसा कहा जाएगा कि वहां पर अभाव हो गया तो कृष्ण में भी अभाव है गोपी में भी अभाव है धाम में भी अभाव है वहां वो चीज है ही नहीं तो जो चीज वहां नहीं है प्रकट लीला में नहीं हो सकती इसलिए वहां पर भी ऐसे भाव हैं तो योग माया के द्वारा जैसे वहां होता है ऐसे यहां पर भी ये योग माया के बल से ऐसे लीला दिखती है इस जगत में भी। इसलिए जागरण का दूसरा कोई अर्थ क्या लगाएगा ये कृष्ण का पति जाएगा हाँ। इसलिए इसी श्लोक में इसी भाव को सबसे यदि इसमें से भागवत में से निकाल दिया जाए तो फिर गोपियों की कोई महिमा ही नहीं रही। इसके संबंध में और हम लोग सब बहुत विचार किए विशेष जो है वो कभी फिर विचार करने के लिए शरीर और जात भाव कृष्ण के प्रति न होकर के भगवान के प्रति न होकर के वो भी भगवत तत्व में कृष्ण के प्रति न होकर के और किसी के साथ में प्रयुक्त नहीं, इसका प्रयोग नहीं। कृष्ण का प्रति राम पर भी नहीं होगा और यहां तक कि महाप्रभु के प्रति भी नहीं होगा, चैतन्य महाप्रभु के प्रति कहीं नहीं होगा, केवल मात्र कृष्ण में और ब्रज में ही यह संभव है। बहुत से लोग महाप्रभु को गौ नागरी सजाते हैं, यह गलत है। एतापन प्रभुता भूतो रवि गोप बद्धो गोविंद एव निखिलात्म निरूढ भाव वांछन के जब भवियो मुनियो वयं च कि ब्रह्म जन्म भी रणम तपथा। एता गोप बद्धो परम प्रभुतो, ये जो गोपियां हैं अंग्रेश निर्देश का के बदला है, ये जो गोपी ब्रज की जो गोपियां हैं भूमि भूमंडल में, यहां पर भूमि से अर्थ ले लो सब ले लो, स्वर्ग लो, वैकुंठ लो और चिन्मय लोग सब कुछ ले, वो लोग तो लोग सब ले, इन सब लोगों में गोपियों का ही मनुष्य धारण करना, परम भी को मानी मनुष्य का रूप धारण करना परम परम सार्थक है। यथार्थ में इन्हीं लोगों का देह धारण करना सार्थक है, क्यों गोविंद एव निखिलात्मनिरूढ भाव, क्योंकि निखिलात्मनि गोविंद एव गोविंद ही एकमात्र निखिल आत्माओं के आत्मा स्वरूप परिमास्पद है और ये गोविंद निखिलात्मनि माने अंतर्ज्ञानी के रूप में जीवों के साथ में रहने वाले भी है, जो जीवों के साथ गौ सवर्णा
सजाते,
ये दोनों एक साथ में समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा और जीवात्मा के रूप में ये जीवों के ये सखा कंपन देने वाले सब समय इनके साथ में रहने वाले, किंतु जीवात्मा इनको देखता नहीं और ये उसके समस्त गतिविधियों को लक्ष्य करते हैं और उनके प्रत्येक क्रियाओं का फल प्रदान और उसका मंगल भी चाहिए। तो ये ऐसे जो सब अंतर्ज्ञानी सर्वशक्तिमान परम कारुणिक जो भगवान है कृष्ण है गोविंद है, गो मने गो इंद्रिय, गो मने गोपाल सखा सब जितने गोपाल सखा, गाय गो वत्स, गो मने वेद, गो मने ब्राह्मण, गो मने बुद्धि, गो मने जानना
सूर्य किरण,
ये सब जितने भी हैं ये सब के आनंद को वर्णन करने वाले हैं, कष्ट के आनंद से करने वाले वो बिंदती माने उनको आनंद प्रदान करने वाले हैं।
अरे उनके देखे एक दोषी होगा क्या बोलिए
डॉक्टर इज यू सो ये गोविंद ऐसे जो गोविंद हैं जिन्होंने अर्थात जिस इंद्र ने ब्रज का इंद्रत्व स्वामित्व सौंपा था, प्रदान किया था टीका लगा करके, आप ही आज से मैं और आज से नहीं हूं मैं समझ लिया। इंद्रत्व माने स्वामित्व, उत्तरदायित्व, उनके टीका लगा करके अभिषेक करके उनका नाम गोविंद रखा। जो नए इंद्र नहीं आप ही इंद्र हैं, ऐसे जो गोविंद हैं सब अंतर्यामी, समस्त जीवों के सब कुछ जानने वाले जो गोविंद हैं, सब अंतर्यामी, सब शक्तिमान और निरपाधिक प्रेम के आस्पद है दो गोपियों के, इनमें इस प्रकार से रूढ़ भाव, इतना सुंदर रूढ़ भाव ये गोपियों का कृष्ण में, गोपियां साधारण रूप में गो चार गो के कंडे इत्यादि करने वाली निम्न श्रेणी की औरतें, विद्या विद्या कुछ नहीं, और कहां कृष्ण में ऐसे कृष्ण में रूढ़ भाव। रूढ़ भाव को समझने के लिए पहले श्रद्धा से चलिए, कोई कोटि कोटि जीवों में से किसी में एक पारमार्थिक श्रद्धा देखी जाती है, यह श्रद्धा भक्ति लता का बीज है, यही आगे बढ़कर के अनर्थ रहित होने पर ये जाकर के निष्ठा होगी, निष्ठा से रुचि हुई, आसक्ति हुई, आसक्ति के बाद में रागात्मिका भक्तों के अनुसरण करने पर वो भाव जीव के हृदय में उदित होता है, जिससे वो भाव मिल करके और जीव का स्वरूप का भाव मिल करके वहां पर भाव उत्पन्न होता है, उस भाव के बाद में प्रेम उत्पन्न होगा, यही प्रेम गोलोक बैकुंठ में या गोलोक ब्रज में प्रेम होगा, और प्रेम से क्रमशः स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव होगा। महाभाव वह है जिससे प्रतिक्षण वो राग बढ़ता जाता है अनुराग कृष्ण के प्रति नए नए रूप में, और दूसरे प्राणियों में भी अपने भाव को संक्रमित कर देता है। यदि किसी कोई ब्रजवासी हो और कृष्ण के विरह में तड़पड़ा रहा हो तो समस्त प्राणी इत्यादि जितने हैं सब उस विरह में यह भाव केवल ललिता जी के गणों में ही होता है, और उसका कभी कभी आभास द्वारकापुरी के मनुष्यों में कभी कभी देखा जाता है आभास, और राधा जी के गण में यह होता है और किसी में नहीं होता, चंद्रावली में भी होगा चंद्रावली के गण में, और इसके बाद में उसकी जो स्थिति और ऊपर चली जाती है, जैसे कृष्ण के रहने पर या न रहने पर भी यदि ऐसी कोई स्थिति हुई जो विप्रलंभ को जगाती है, उस समय में या मिलन जब होता है तो अपनी शुद्ध बुद्धि सब कुछ खो देती है, एकदम पाव जैसी हो जाती है, और उस समय एक भ्रमर को भी कृष्ण का दूत मान लेना और उसको गर्जन तर्जन इत्यादि करना, डांटना, डपटना, प्रीति इत्यादि करना, और कृष्ण की शुद्ध बुद्धि से पूछ लेनी, कमाल को देख करके कृष्ण समझ करके उसे निपट जाएंगे, उद्धव आएंगे कृष्ण जैसे ही देश में, किंतु उनसे कोई संबंध नहीं, ये सब रूढ़ भाव होता है। कृष्ण और राधा जी दोनों बैठे हैं एक साथ बैठे और राधा जी भूल गई है कृष्ण है कि नहीं, अपने हाथों से आलिंगन किए हुए हैं, या राधा जी कृष्ण की गोदी में है, या कृष्ण ही राधा जी की गोदी में है लिए हुए और उनको शुद्ध बुद्ध नहीं करती, और कृष्ण के विरह के लिए रोने लगती है, इस भाव का नाम रूप भाव। अब यही रूल और आगे भी बढ़ जाता है, उसका वर्णन तो बहुत ऊपर है। ये इन गोपियों ने देखो तो कैसा रूढ़ भाव, इसी रूढ़ भाव में एक भाव जार भाव, जार भाव इतना सहज नहीं, नीचे नहीं यहां पर। अतः गोपियों का प्रेम सामान्य नारद और उद्धव की भांति साधारण नहीं है, या हनुमान के प्रति भी, हनुमान का भी, हनुमान में भी प्रेम है। जितने बैकुंठ में लोग जाते हैं सब में प्रेम है ना? और ये प्रेम भी राग कहलाता है, किंतु ब्रज का प्रेम और ये बैकुंठ का प्रेम में बहुत अंतर है। यह अंतर पहले से ही होता है। देखो दो प्रकार के सुंदर खूब मजबूत एक ईंट हुआ ना, और एक ईंट ऐसा होता है जो कि रेती प्याज के साथ थोड़ा सा ऐसा तू लग जाए ना तो वो फूट जाएगा, और उसके वो सब मिट्टी फिट्टी सब निकलती रहती है। ये ईंट खराब कहां से हुआ? उसके पानी और मिट्टी में ही दोष है ना? बनाने में कुछ ऐसा ही है, मिट्टी अच्छी नहीं है, पानी ही नमकीन है और उसे ईंट बनाया जाए और एकदम बालू वाली मिट्टी को, तो वो अपने आप गड़बड़ हो जाएगा, उसमें नमक पकड़ लेगा, नूना लग जाएगा, वो खराब जल्दी टूट जाएगा, हाथ से ही ईंट को तोड़। बंगाल में गंगा की जो मिट्टी होती है जो बह करके आती है किनारे में, उस मिट्टी को लेकर के ईंट बनाते हैं, एकदम लोहा जैसा ठंड ठंड होता है, उसका मिट्टी भी अलग है। ऐसे ही प्रारंभ से श्रद्धा उसकी वो कुछ दूसरे निराली तरह है, और वही श्रद्धा जब निष्ठा होगी तो वो दूसरे तरह की निष्ठा होगी ब्रज वाली, और बैकुंठ वाली निष्ठा जो होगी वो दूसरे किस्म की। तो इस श्रद्धा से हम धीरे धीरे निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम वो ब्रज के तरफ मिले जाएगा, उसका दूसरा ही विचार है। और बैकुंठ वाली श्रद्धा जो है वैदिक भक्ति के द्वारा जो होती है वो दूसरे टाइप की होती है, प्रारंभ से वो रूह नहीं हो सकती बैकुंठ वाली, और ब्रजभाव वाली और उसमें यदि माधुर्य होगा और उसमें ये पहले के श्लोक वाला होगा तभी वो रूह होगा। प्रेम गोपियों के अतिरिक्त किसी में भी, यहां तक कि मां यशोदा में भी रूह भाव नहीं, गोपी में रूपाव है। तो गोपियों का प्रेम प्रष्टई रपी असुलभम, प्रष्टई मैंने नारद जैसे प्रेमी, उद्धव जैसे प्रेमी लोग एकांत प्रभु के अत्यंत प्रिय पात्र हैं, इन लोगों के लिए भी असुलभ, असुलभ मैंने लालायक तो रहते हैं पाने के लिए कैसे मिल जाए, किंतु वो चीज उनको नहीं मिलती है रूपाव, वो मिलेगी किसको? यदि गोपी आनगत्य में कोई भजन करे सखी भाव से तभी यह सुनकर प्राप्त हो सकता है। वो भी कोई रसिक वैष्णव गुरु मिले उनके आनगत्य में भजन करने से देकर ही यह संभव हो सकता है। और ये महाभाव स्वरूप की जो गोपियां हैं इनमें रूढ़ भाव, अतः उनका प्रेम सामान्य साधारण नहीं। हम संसार से डरने वाले जो ऋषि मुनि हैं, मुनि मुनि माने
मननशील,
मन से चिंता करते हैं वो मुनि कहलाते हैं। जैसे विश्वामित्र जी मुनि, नारद जी को भी देवर्षि मुनि कहते हैं, बहुत से लाखों लोग मुनि हैं, मन करते करते शरीर का शुद्ध छोड़ देते हैं और मन से ही मन को प्रभु में लगा देते हैं, ऐसे मननशील जो मुनि है। क्यों? मुक्ति की इच्छा रखने वाले संसार से डरने डरते हैं मुनि लोग। संसार में कितना क्लेश है, कितना क्लेश है, यदि हम लोगों को पूर्व जन्म की अनुभूति होती तो अभी ही मुक्ति के लिए चेष्टा करने लगे। किंतु भगवान ने ऐसा कर दिया है माया से मोह को, पूर्व जन्म के दुखों की याद में मरते समय कितना दुख हुआ होगा। एक आदमी किस स्थिति में जहर खाता है, किस स्थिति में असहाय होकर के बेबस होकर के मरता है, कोई भी हो, विशेष करके जगत के जितने बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग हो गए हैं, जैसे हिटलर इत्यादि सब जितने दैत्यदानों की किस स्थिति में मरे हैं, मरने में कितना कष्ट होता है, इतना मुश्किल लोग ऐसे ही मर जाते हैं, और जीवन में कितना कष्ट होता है तुम लोग अभी नहीं समझोगे। किसी ने बड़े शौक से शादी की, बहुत शौक से, बड़ी सुंदरी रूपवती कोई लड़की से शादी हुई, या सुंदर पति से किसी की शादी हो, और तुम्हारे देखते ही एक दो वर्षों के बाद ही देखते देखते वो दूसरे पुरुष से या दूसरी लड़की से वो परस्पर प्रेम करने लगते, और तुम देख रहे हो कुछ कर नहीं सकते, उसमें हृदय में कैसी जीत होगी तुम लोग अभी न समझो, किंतु वो लोग संसार के लोग समझ कितना उससे मर जाना, इसीलिए आदमी सुसाइड कर लेता है, कितना ये संसार में दुख भरा पड़ा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि हृदय में सुख कभी अनुभव करता है, किंतु ऊपर से ऐसा दिखता है चिकना चुपड़ा हुआ, ये सब कुछ कुछ मुस्कुराते हैं, दुख से मर रहे हैं, टीस रहे हैं, किंतु ऊपर से बात होकर के दिखलाते हैं कि हम हंस रहे हैं। मैं एक समय बंगाल के एक जगह में प्रचार करने गया, बड़े घर की लड़की और बड़े घर में उसकी शादी हुई, रुकवती गुणवती सब प्रकार से, हम लोग उसको बेटी के रूप में देखते हैं। एक दिन आकर के कहने लगी, हुई महाराज मैं क्या कहूँ, आप हमारे पिता तुलने पर दो एक वर्ष शादी हुए हो, किंतु भीतर की तीस भीतर रह करके मुस्कुराना पड़ता है, कितना इसमें दुख होता है मैं नहीं कर सकता, इच्छा करती है कि अभी मर जाए। ये संसार ऊपर से निभावना है, यहां तक कहते हैं तो कपबात अपित कंठा अवरोधन विधो स्मरण कुटस्था
भयनं कुतस्ते कृष्ण तदीय पाद पंकज पंजरा
कृष्ण तदीय पाद पंकज पंचरां के, कृष्ण हमारा मन सब समय आपके चरण कमलों में लगे, बचपन से ही क्यों यदि वृद्धावस्था आ गई और गले में कफ पित्त और वायु का यदि प्रकोप हुआ तो कफ ऐसा घर घराने लगेगा जो कुछ बोल नहीं सकते, कोई उपचार नहीं हो सकेगा, उपचार कर्म माले के ही ऐसे ही दशा होगी, असहाय बन जाता है, बोल नहीं सकता, टट्टी पैखाना सब वहां पर हो गया। उसमें भगवान का स्मरण भी होगा, उतना जबरदस्त कष्ट होगा उसमें भी भगवान का स्मरण होगा, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करने से, अभी से ये सब करने से इससे हम बच सकते हैं, ऐसी स्थिति भी नहीं आएगी, और यदि स्थिति भी आएगी तो प्रभु की बात करके उसको इसके लिए स्मरण करें। जैसे अजामी मर रहा था वैसे ही दिल मिला, किंतु कुछ कुछ किया था उसने पुत्र के लिए, इसलिए झट भगवान के दूत आ गए और जम के दूतों को भगा दिया और वो स्थिति नहीं आने दी। इसलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो विवश होकर के असहाय होकर के न मरे, सभी ऐसे ही मर, और संत लोग तो भैया कुछ बिछा दो नीचे और मैं जाऊं, अरे अभी 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 कहा नहीं, अभी 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 समय नहीं, कुछ बिछा दिया, बैठ गए या सो गए, प्राणायाम जैसा किया और फिर देखते देखते एक दो मिनट नहीं प्राण निकल सकते चले। ऐसी यदि मृत्यु हो तो बड़ी बड़ी है, बड़ी सुंदर है, किंतु ऐसी मृत्यु मिले तब तो इसीलिए कह रहे हैं हम जो मुनि लोग हैं संसार से भीत होकर के, विशेष करके कलयुग से भीत होकर के भगवान के शरण हम जाते हैं, कुछ उसके लिए प्रयास करते हैं मुनि वयंच, और हम भी ऐसा चाहते हैं, कैसा भाव रूढ़ भाव गोपी में जैसा न, और वांछन्ति यत् भवभ्योऽन्यैव वयं च हम कौन का राय
बुद्धि
पर हम मैंने नारद ऋषि सनत सनंदन सनत कुमार इत्यादि भी ऐसे प्रेम को हम चाहते हैं वयं च जो लोग मुक्ति चाहते हैं संसार के कष्टों को दूर करने के लिए और मुनि लोग एवं वयं च हम जो भक्त हैं ये तीन और नहीं तो इसको ले लो हम मुनि प्रकृति हम लोग जो हैं एक ही मिले किंतु न तीन लेना अच्छा मुनि लोग जो कि मुक्ति चाहते हैं संसार दुख से और संसार से भीत जो लोग मुनि जो मुक्ति चाहते हैं और वयं च हम भक्त लोग जो है प्रेमी भक्त भी वांछन्ति ऐसे रूढ़ भाव को कृष्ण के प्रति चाहते हैं किंतु नहीं होगा कि ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य किंतु हम लोग इसको पाते नहीं है इस प्रेम को गोपियों का जैसा है क्योंकि महाभाव संपत्ति की अधिकारी एकमात्र बचती बचने ही है और कोई नहीं है उन्नत उज्जवल रस गोपियों का ही समझ लो जो उनका जैसा भाव को उन्नत उज्जवल रस का है और ऐसी ऐसा प्रेम यहां तक कि ब्रह्म को भी नहीं ब्रह्मा को भी नहीं या ब्रह्मा का जन्म ला करके मुझको क्या लाभ होगा मैं ब्रह्मा का जन्म भी ले जाने क्या क्योंकि उनको ऐसी लीला कथाओं को सुनने का सुयोग नहीं हम मनुष्यों को कोई बड़ा भाई सुयोग है किंतु है बड़ा दुर्लभ इसलिए ब्रह्म हमें जन्म की जोड़ने की जरूरत नहीं हमको ऐसी लीला कथाएं गोपियों की जब सुनने को मिल जाता हमारा जीवन हम और कुछ नहीं चाहते हैं उद्धव जी कहते हैं तो ये सनातन गोस्वामी जी टीका में बतला रहे हैं इदानीं जगत पूज्यता श्री भगवत भक्त बाबा बंदनीय पराकाष्ठा प्राप्त ब्रह्मा इत्यादि की भी बात कह रहे हैं उन लोगों को भी ये नहीं है थोड़ा और लोगों की तो कह रहा है ये जगत पूज्य तम भगवत भक्तों में परम स्तुति की विषय है ये गोपियां और वंदनीय है इनकी महिमा अत्यंत पराकाष्ठा तक है प्रेम की अंतिम अवधि तक है ये कृष्ण कह रहे हैं तुम हमारे दुख हो सुहृद हो सखा के स्वरूप हो भावुक भक्तों में अर्थात उत्तम भक्तों में तुम अपनी सीमा अपनी हो अपना उदाहरण अपने आप हो तुम जैसा भक्त नहीं मैं तुमको लक्ष्मी और अपने भाई बलदेव यहां तक अपनी आत्मा से भी अधिक तुमको मैं प्राप्त या स्नेह करता हूं तुम्हारे जैसा प्रेमी भक्ति जगत में दुर्लभ है यहां तक कि शंकर भी हमारे एक ही स्वरूप है हरि हर एक आत्मा है बंधु हमारे सफा है किंतु उनको भी वो भी हमारे इतने प्रिय नहीं है लक्ष्मी भी प्रिय नहीं है तुम जितने हमारे प्रिय हो तात्पर्य कि ब्रह्मा भक्तमय पर भी भक्तमय पर भी भक्ति अंश से पुत्र इत्यादि का अंश उसमें अधिक है ना भी कभी से पैदा हुए हैं यदि भक्त होते हैं तब तो उनकी महिमा होगी गोपियां संबंधागण अनुगा नहीं है कम अनुगा नंद बाबा तक जितने हैं जसोदा मैया तक सखा लोग ही संबंधानुगा है किंतु ये संबंधानुगा से दूसरी तरफ की है ये कह रहे हैं की समझ, ये भक्ति का यदि भाव होता तो ब्रह्मा जी प्रिय अधिक होते, किंतु इनमें पुत्रत्व का भाव जिस परमाणु में वो भक्त हैं उससे अधिक कहीं पुत्रत्व का भाव कृष्ण का उनके प्रति, नारायण का उनके प्रति है। जहां पर वो प्राधान्य होता है वहीं पर वो संबंध कहा जाता है। जैसे ब्रह्मा जी का पुत्र का संबंध है, इसलिए ब्रह्मा जी को सब समय अधिकारी भक्त अथवा पुत्र उनको माना जाता है। किंतु गोपियां, गोपियों का परिचय प्रेम का, प्रेमवती है, न स्त्री, स्त्री से उनका विरह दूर करने के लिए, प्रशमित करने के लिए। किंतु जितने जितने उनको संदेश सुनाते गया है उनका विरह और चित्र होता है। जो भी संदेश निकाले अपने पॉकेट से, अपनी थैली से, उनका वो भाव दूर होता है। या अंत में नहीं हुई, इस प्रकार से उत्तरोत्तर वर्तमान अश्रुत अदृष्ट पूर्व प्रेम गांधी अवलोकन करके उद्धव आस है मन ही मन में विस्मित हो उठे और सिद्धांत किया है। ऐसा गंभीर प्रेम कहीं सुनने और देखने में आज तक हमको नहीं मिला। कभी मैंने न तो सुना और न तो देखने की तो बात दूर है। नंद बाबा का भी प्रेम देखा किंतु गोपियों के यहां गए तो वो साथ कुछ भूल गए, बहुत दूर रहकर और केवल भ्रमर और राधिका में जो वार्तालाप हो रही थी अकेले एक तरफा राधा जी बोल रहे थे, बस उसी को सुन। कहते हैं कि वो भ्रमर भी कोई दूसरा नहीं था, कौन था, कृष्ण उसको सुनने के लिए खुद ही भ्रमर बन करके आए और सुन रहे हैं। इसलिए उद्धव जी उनको प्रणाम कर रहे हैं, बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाक रेणु अफिक्नसा माने निरंतर लगातार प्रणाम ही प्रणाम कर एक भूलि की वंदना करते चले जा रहे हैं। इसे गुरु भाव के इसी श्लोक में पहले मुमुक्षु, मुमुक्षु माने
मुक्ति चाहने
वाले, मुक्ति को चाहने वाले, संसार भय से भी जैसे 60,000 ऋषि लोग की 88,000 ऋषि लोग में कलयुग के भय से भगे हुए आए, जब भाग करके आ रहे थे तो ब्रह्मा जी से स्तुति की हमारा कल्याण कैसे हो, तो उन्होंने कहा कि देखो ये चक्र एक यहां से मैं छोड़ रहा हूं, इसके नेमी जहां पर गिरेगी उसको नैमिषारण्य समझना और वहीं पर तुम लोग बैठ करके कथा का सत्र आयोजित करना और भगवान की लीला कथाओं का स्मरण करना और सुनना। बस कलयुग के लिए भयभीत से बचने के लिए यही एकमात्र उपाय है, और कोई दूसरा जग इत्यादि के लिए। मनुष्यों ने देखा हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करके और यज्ञ करके उसके धुएं से उनका शरीर काला हो गया
अंदर
और अंदर भी काला। अंदर काला किस लिए हुआ, यज्ञ के द्वारा भगवान मिलेंगे तो बुद्धि भी काली हो गई, उससे नहीं मिलेंगे भाव से मिलेंगे। ये भाव आएगा कहां से, हरि कथा के माध्यम से, ये प्रेम होगा, उस प्रेम के द्वारा भगवान मिल सकते। इसलिए बुद्धि भी काली हो गई और शरीर भी काला उनका हो गया, जब वन जंगल सब कुछ काला हो गया उस धुएं से, तब उन्होंने कथा आरंभ की। तब सुत गोस्वामी लोमहर्षण ने उनको समस्त पुराणों का पाठ किया और सुना। अंत में तभी तृप्ति नहीं हुई तो बलदेव प्रभु जी ने आकर किसी दोस्त ने उसके उसका गला काट दिया, क्योंकि उनका सम्मान नहीं किया गया और उसके बदले में उसके उद्दुष राजपूत को बैठा दिया। और तब उन्होंने भागवत वहां पर सुनाया। तो ये है मुमुक्षु, मुक्त, जो लोग मुक्त हो गए हैं, सनक सनंदन सनातन ये सब मुक्त हैं, नारद जी मुक्त हैं, और भक्तों से भी महान महात्मा ये गोपियों का है, ये भक्त में नहीं है। साधारण रूप में भक्ति की पांच सीमा बतलाई गई, ज्ञाननिष्ठ भक्त, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त,
प्रेम पर
प्रेम भक्त और प्रेमातुर भक्त, यहां तक तो भक्त उद्धव जी प्रेमातुर में आएंगे, ज्ञानी भक्त में सनक सनंदन सनातन आएंगे, शुद्ध भक्त में अम्बरीश महाराज आएंगे, प्रेमी भक्त में हनुमान आएंगे और प्रेम पर में
पांडव
लोग आएंगे, और उद्धव जी आएंगे प्रेमातुर में, प्रेम में आतुर हो जाते हैं। गोपियां इसमें कहां आई, गोपियां में सबके बंधनीय है और ऊपर वो भक्तों की कोटि में नहीं, इसलिए कह रहे हैं ये जो है ये तीनों से ऊपर बंधनीय, ये सभी लोग आकांक्षा रहते हैं कि गोपियों जैसी भावना हमारे अंदर में आए, किंतु होगा नहीं, कब होगा, जब उनकी कृपा उनके ऊपर में होगी। एता नंद ब्रजस्थित महालक्ष्मी स्वरूपा गोपियां पृथ्वी में सफल जन्मा, इन्हीं का जन्म लेना सफल है, क्यों, वो क्या श्लोक है, इन्हीं का नयन होना यथा सार्थक है, जिन्होंने
अश्वतान फलमिदम न परम
अश्वतान फलमिदम न परम मिला, इनका जन्म लेना सार्थक, आंखें भगवान में आंखें दे तो अच्छा है, किंतु यदि आंखें दे तो सार्थक नहीं है, कृष्ण गोचारण करने के लिए जा रहे हैं, बलदेव जी आगे जा रहे हैं, उनके पीछे कृष्ण है, कृष्ण बंसी बजाते हुए मंद मुस्कान भरी नेत्रों से करुणा पूर्वक दृष्टि से किसी की तरफ में लज्जाई की दृष्टि से देख लिया, और उधर बंसी भी बज रही है, स्मित हास्य भी है, ऐसे मुख का दर्शन करना ही ज्ञान की सार्थकता है। गोपियों का कृष्ण के प्रति रूढ़वा स्वाभाविक वो भाव है, मूल में भूमि जो शब्द है, पृथ्वी इत्यादि अन्नत्र स्वर्ग जहां भोगों की प्रचुरता है, और बैकुंठ से भी ले लो एक भूमि का, बैकुंठ इत्यादि सब जगहों में इन्हीं का जन्म एकमात्र सार्थक है गोपियों का। जिसका स्वरूप है वही पाएगा, सब लोग उसको नहीं पाएंगे, जिसका ये स्वरूप में ऐसी भक्ति होगी वही उसको सहज रूप में मिल जाएगी, इसीलिए कहते हम लोगों को आज तक नहीं मिला, इसका कुछ रहस्य लेता है, स्वरूप सुनो, वस्तु पर वेद का भी चरम प्रतिपाद्य विषय यह रूह भाव ही है, भागवत में कही है, भागवत वेदों का सार, इसलिए भागवत का भी चरम प्रतिपाद्य विषय ऐसा ही रूढ़ भाव है जो गोपियों में था, इसलिए वो वेद का वेदई
वेद्य सर्वम अहमेव वेदांग वेद विदेव चाहम,
तो ये प्रेम ही वेद का परम गोपनीय चीज है, किंतु सब लोग इस चीज को समझ नहीं सकेंगे, ये वेदों में यही प्रतिपाद्य विषय है, यह ऐसा प्रेम तो गोपियों के उस भाव को, गोपी में ऐसा यह भाव स्वाभाविक रूप में अभिव्यक्त होता है, इसलिए गोपियों के कंठ में यह वेद और हृदय में उनके कंठ में जो कुछ बोलती है ना वो ब्रह्म की चरम बात है, जैसे कृष्ण को जा कहा कपट धूप इत्यादि का गोपियों का मुख से जो निकला उनके कंठ में और हृदय में उनका जो भाव है यही वेद का प्रतिपाद्य विषय है। वेद अध्ययन इत्यादि की क्या हो सकता है,
ऐसा प्रेम यदि किसी के हृदय में हो जाए तो क्या जरूरत है वेद पढ़ने की,
कोई जरूरत। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा बस कृष्ण नाम करो, कृष्ण नाम के द्वारा सब कुछ हो जाएगा, और रसिक भक्तों का कार्तिक वैष्णवों का संग करो, बस यही करने से तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा।
हरि मां पठ हरि कर, मां पठ जजुर, जजुर वेद और साम वेद ऋग्वेद अथर्व वेद का पाठ मत करो, वो कृष्ण करने से ही सब तुम्हारा वेद पाठ हो गया, कुछ पाठ करने की जरूरत नहीं। मान लिया कि श्रीमद भागवत कोई पाठ कर रहा और उसमें स्वभाव की गोपी गणों के अनुरक्त में भजन करने की लालसा जग गई तो भागवत पाठ हो गया कि नहीं, उसमें श्लोक पढ़ने से होंगे वो भाव यदि आ गया तो यही वेद का प्रतिपाद्य श्रीमद भागवत का प्रतिपाद्य हो गया, उसका सब कुछ पढ़ना हो गया। गोपियां भागवत पढ़ी थी आखिर भागवत का प्रतिपाद्य विषय ही गोपियों के भाव में सब इस रूप में समझ। इसलिए प्रेम ऐसा जो है उत्तम आभक्ति यही वेद का प्रतिपाद्य विषय है, यह यदि हो जाए तो और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। ये कैसे होगा, वैष्णव की सेवा अनुगत्य भावना से होगा और अपने प्रयास से भाई नहीं होगा। यहां पर कि ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य, यहां पर ब्रह्म जन्म कहते हैं क्या, यहां पर ब्रह्म होता है वेद ब्रह्म शब्द ब्रह्म, उसमें जो निष्णात है ऐसा जन्म लेकर के हम क्या करेंगे, कोई भी हमको जरूरत नहीं है, बस हमको न धर्मम न धर्मम सुख उत्तम नहीं करूं प्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर ज्ञान, बस हम तो राधा कृष्ण की प्रचुर सेवा प्रज में करेंगे। इसलिए वेदाध्ययन इत्यादि क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अथवा ब्रह्म पाने से आत्मतत्व, आत्मतत्व को जान करके बहुत से लोग तो जानते हैं आत्मतत्व को, श्रेयसी भक्ति मुदिश्य के भी हो क्लेशियंत केवल ही बुध लब्धे ते शाम असल क्लेश यथा स्थूल तुषा बुधा। आत्मतत्व को जान करके क्या होगा, कोई विशेष लाभ नहीं। जो लोग अपने अपने कोटि कोटि जन्मों में बड़े कष्ट स्वीकार करके आत्मतत्व को जानना चाहते हैं वो वंचित हो जाते हैं, कैसे, इसलिए कि मान लिया कि घोर अंधकार रात्रि हो, खूब अच्छे तरह से समझे इसको, घोर अंधकार रात्रि, रात्रि में हम अपने हाथ से इसको देख करके समझ सकते हैं कि नहीं जो मैं हूं, हमारा हाथ है, हमारा ये हाथ है, हमारी ये नाक है, ये हमारा पैर है ना, ये हम समझ जाएंगे। इसको कहते हैं आत्मबोध या आत्मतत्व को जानना, जान लिया, किंतु उसका रंग काला है कि सफेद है ये कैसे समझेंगे, उसमें कैसी बुद्धि है क्या है नहीं है ये कैसे समझेंगे, ये तो लाइट के मार्फत से ये सब जानना पड़ेगा। यदि सूर्य उदित हो जाए तो हम देखेंगे ये हम हैं, अब टटोलने की जरूरत नहीं है, हम काले हैं कि गोरे हैं यही मालूम हो जाएगा, कैसा व्यक्ति है ये सब मालूम हो जाएगा, और सूर्य को भी देखेंगे और विश्व के सब चीजों को देखेंगे, यह है भगवत तत्व का ज्ञान, और जीवात्मा तत्व का ज्ञान है कि मैं हूं, आंख बंद करके भी देख रहा हूं कि मैं हूं। इसलिए आत्मतत्व का जो चेष्टा करते हैं जानने के लिए उनको कुछ हाथ नहीं लगता, आप जो केवल भगवत तत्व जानने के लिए चेष्टा करते हैं कृष्ण तत्व और समझे राधा तत्व इत्यादि परिकर तत्व, वो अपने को भी जान लेते हैं अनायास, कृष्ण को भी जान लेते हैं, प्रेम को भी जान लेते हैं, सब कुछ को जान लेते हैं। इसलिए ब्रह्म तत्व की हमको क्या जरूरत, इसलिए किम ब्रह्म जन्म भी, हमको वैसे ब्रह्म तत्व को जानने में अपने जन्म को देखा गंवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये भाव
अथवा ब्राह्मण का जन्म, ब्राह्मण का जन्म मैंने वेद पढ़ता है इसलिए उसको भी जरूरत नहीं है। क्यों? अनंत कथा वशस्य, अनंत कौन है? रासलीला करने वाले को अनंत लील कहते हैं। इसमें सब कुछ लीलाएं आ जाती हैं। वो अनंत की जो लीला है कौन सी? कथा रसस्य, रस की कथा है। वो कथा यदि हमको मिल जाती है तो हमको ये सब अभी जो बताया पहले, अपने आत्म अनुभूति की कोई जरूरत नहीं, ब्रह्म जन्म की जरूरत नहीं, ब्रह्मा के जन्म की जरूरत नहीं, वेद के अध्ययन की जरूरत नहीं, हमको किसी चीज की जरूरत नहीं। अतः इस प्रकार असल ब्रह्म जन्म में भी भगवान की कथा का यदि रस नहीं मिला, उसमें रुचि उत्पन्न नहीं हो गई, आसक्ति उत्पन्न नहीं है, तो ये जन्म बेकार है। मान्य कि हम हरिनाम करते हैं, हरिनाम समस्त साधनों में श्रेष्ठ है, यहां तक ही साध्य है, किंतु कथा में रुचि नहीं है, कुछ दिनों के बाद में वो हरिनाम छोड़ देगा, साधु संग छोड़ देगा, अंत में फिर नीचे चला जाएगा माया। इसलिए हरि कथा प्रारंभ से ही श्रवणम है ना, पहले तो श्रवणम है ना, पहले श्रवण, इसके बाद में कीर्तन, पहले श्रवण है और अंत तक ये श्रवण रहेगा। जैसा उसका श्रवण होगा नाम भी उसी रूप में उदित होगा, उसी के ऊपर में सब कुछ श्रवण के ऊपर में निर्भर है। इसलिए यदि हरि कथा में रुचि नहीं ली, भगवान की रसिक कथाओं में दशम स्कंद इत्यादि में रुचि नहीं ली, तो जन्म विफल हो गया। अथवा भगवान अनंत की कथाओं में जिनको रस की अनुभूति नहीं होती, उनका वेद अध्ययन, शास्त्रों का पढ़ना, ये सर्वदर्शन पढ़ना सब बेकार था, एकदम बेकार। यह तो वेद अध्ययन व तदुक्त कर्म के आचरण से, समूहों से भगवान की कथा में कोई रुचि उत्पन्न कभी हो ही नहीं सकती। इसीलिए बतलाया आराधितो हरि तपसा तथा किम, नाराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, अंतर बहिर यदि हरि तपसा तथा किम, नांतर बहिर यदि हरि तपसा। कठोर साधन रूपी कष्ट को स्वीकार करने से, तप करने से, कष्ट स्वीकार करने से भगवान में प्रेम नहीं होगा था। इसलिए यदि भगवान की आराधना हो गई तो तपस्या की जरूरत है, और यदि भगवान की आराधना ही नहीं हुई तो तपस्या करते तो क्या होगा, बेकार का। और यदि अंतर और बाहर में भगवान है तो तपस्या की कोई जरूरत नहीं, और यदि बाहर और भीतर भगवान है ही नहीं है तो तपस्या करके ही लाभ क्या होगा, उसे तो ऐसा होगा नहीं था। इसलिए सब समय वो बेकार है। दूसरी बात, जैसे नाव, यदि किसी नाव नदी को पार करना हुआ तो नाव पर चढ़ करके उस पार हो जाते हैं, फिर
नाव को छोड़,
नाव को छोड़, कहीं ऊंचा ऊंचा चढ़ना है तो सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर सीढ़ी को छोड़ देते हैं ना। कहीं हमको अंधकार रास्ते से गुजरना पड़ता है, दीप को ले लेते हैं, अंधकार को पार करके फिर दीप को रख देते हैं या प्रकाश में आ जाते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं, नहीं। प्रकाश में दीप की कोई भी आवश्यकता नहीं। जहां नदी को पार कर गए नदी की आवश्यकता है। ठीक उसी तरह से यदि किसी को भगवान के प्रति और भगवान की कथाओं के प्रति रुचि हो गई, प्रीति हो गई, तो और सब जितने अभी तक जो थे साधन उनकी क्या जरूरत रह गई, कोई जरूरत मूल में वही चीज होगी, भगवान की कथाओं के प्रति गति और वो भगवान के प्रति प्रेम, गोपियों जैसा, तो और कोई चीज की आवश्यकता। ये होगा केवल मात्र वैष्णवों के संग में, रसिक वैष्णवों के, तत्त्व वैष्णवों के संग में। इसलिए मुझे ब्राह्मण को या ब्रह्म इत्यादि का भाव नहीं चाहिए, इसलिए कहते हैं कि यह भाव जो गोपियों का है स्वाभाविक है और यही रूढ़ भाव है। इसलिए गोपियों के प्रेम की महिमा का वर्णन करना हम लोगों के साथ में नहीं, हम लोग चाहते हैं कि इसको प्राप्त करें। अगले दिन आज अभी हम लोग चलेंगे
कोयला वाली
कोयला वाली गली ले लो चतुर्मुख अथवा ब्रह्मने शब्द ब्रह्म लो या ब्रह्मने यहां पर ब्राह्मण जन्म वैदिक इत्यादि जो पढ़ते हैं वो इन सब में भी यदि अनंत के कथा में रसमन को नहीं है तो बेकार हो गया। ऐसे जन को हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हैं पुत्र होता। और वे लोग कथा रसस्य कथा में जिनको रस है भगवान कृष्ण की मधुर लीलाओं में रस इत्यादि में और बाल्यपन से लेकर तो जितनी भी रस की बातें उसमें बासल्य सप्त मधुर रस की बातें इन कथाओं में जिनको रस है तो ब्रह्मजन्म में क्या जरूरत है। और उल्टा ले नाराजी तो यदि हरी तत्सा कथा की आराधित तो यदि हरी तत्सा यदि भगवान की आराधना करते तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं। उसी प्रकार से भगवान की लीला कथा में जिनको रस उत्पन्न हो गया उनको भी ब्रह्मजन्म की क्या जरूरत है। और जिनको भगवान की लीला कथाओं में रस है वो वेद इत्यादि अध्ययन के लिए सर्वदर्शन अध्ययन के लिए वो समय क्यों व्यवहार करें कोई भी जरूरत नहीं। ये दोनों में आया और सर्वथा गोविंद पदार बिंद मकरंद लंपट लोग हैं। गोविंद श्री गोविंद पदार बिंद मकरंद लंपट लोग हैं मैंने रसिक भक्त कोई कथा रसस् जिसका अर्थ ये चल रहा है लोगों के लिए ब्रह्म जन्म भाव के उपयोगी नहीं है, भक्ति के लिए चाहिए अनुकूल। देखो भक्ति रागंगा भक्ति में चार चीजें होती हैं। एक होता है भावमय भाव संबंधी भाव अनुकूल और भाव अविरुद्ध और एक भाव विरुद्ध। ये पांच चीजें होती हैं। जब तक ये सब चीज नहीं समझेंगे तब तक तो डर होगा। भावमय किसको कहेंगे स्थाई भाव संबंधित जो भाव है वो भाव है। जैसे सप्त भाव है धर्म भाव ये भाव है उनकी क्रियाएं उनकी सेवाएं वो सब चीज है भाव है। भाव संबंधी मैंने भाव से संबंध रखने वाली जो चीजें वो क्या चीज उनकी जो क्रियाएं हैं उनकी जो सेवाएं हैं वो सब भाव संबंध है। जैसे भाव संबंध किसको कहेंगे वही आगे चल करके
भावमय
हो जाए। जैसे गुरु पदार्थों से लेकर 64 प्रकार की भक्ति के जो अंग हैं उसमें गुरु पदार्थ है और दीक्षा शिक्षा और विश्रम्भन गुरु सेवा इत्यादि जो 10 जो भक्तों शामु सिंधु में पहले के जो अंग हैं मालूम पड़ता है कि ये सब भक्ति क्या है कृष्ण से क्या संबंध है। गुरु तुमने धारण किया गुरु की सेवा किया कृष्ण के लिए क्या है किंतु नहीं ये भाव संबंधी है गुरु जी की शिक्षा दीक्षा उनके प्रति श्रद्धा करने से ये भाव संबंधी होकर के पीछे यही भाव है ये हो गया भाव संबंधी से भाव और भाव अनुकूल द्वैता ध्यान भाव के विपरीत है। द्वैता का ध्यान, रुक्मिणी का ध्यान, ये सब और ऐसे ही सब कुछ है, तो ये सब प्रतिकूल है। इनको यदि हम आचरण करेंगे तो उनका भाव संबंधी और भाव वही सब चौपट हो जाएगा। यानी भाव के अनुकूल है, जैसे तुलसी जी की सेवा अनुकूल है, भक्तों का चरित्र गाना, गिरिराज गोवर्धन की वृंदावन की परिक्रमा, और यदि द्वारका की परिक्रमा हो तो भाव का प्रकूल हो जाएगा उनके लिए। और जो द्वारका का भाव चाहते हैं उनके लिए वो अनुकूल होगा। यदि कोई राधा कृष्ण का ये मथुर रस चाहता है और नाम रख लिया अपना वैदेही शरण, वैदेही शरण मैंने क्या
सीता जी की,
वैदेही है सीता जी और उनके शरणागत है नहीं, तो वैदेही शरण मैंने क्या हो गया सीता जी। और ये नाम यदि कोई मधुर रस का कृष्ण का भक्त होगा तो उसको सब समय फलेगा। रुक्मिणी, रुक्मिणी प्रिय नाम रख दिया या रुक्मिणी दासी रख दी, तो फिर क्या होगा उसको नाम ये फलेगा, आज हमारा नाम बदल दीजिए गुरु जी। और कोई राधा प्रिया, राधा दासी, विशाखा दासी, ब्रज प्रिया, ऐसे नाम। इसी तरह से जितनी अनुकूल चीजें हैं वही उसको ठीक चाहिए, नहीं तो प्रतिकूल हो जाने पर गर्व हो जाएगा। तिलक धारण, गले में कंठी, ये प्रतिकूल भी नहीं है, भाव संबंधी भी नहीं है, किंतु कुछ दिनों के बाद में ये भाव संबंधी और अंत में तो भाव में
एकादशी व्रत, दामोदर,
एकादशी व्रत, दामोदर व्रत, ये सब
भाव पुष्टि के सहारे।
अच्छा, और भाव के विरुद्ध जो है वही जो बदला है उनको दूर रखना पड़ेगा।
मैं समुद्रा दर करते
यदि कोई गोपी भाव चाहता है और दंड कसरत वैसे खुद करता है, ऐसा करता है तो उसको क्या है ना, नहीं होगा। यदि खूब अत्यंत वैरागी बाबा हो, तीव्र वैराग हो, तो फिर क्या होगा, तो उसमें भक्ति जलने की संभावना है। तीव्र वैरागी हुआ, सब कलाओं में निपुण होना चाहिए। 64 कला में यदि वो रसोई नहीं खूब अच्छी तरह से बना सकता, यदि सुंदर रूप में हाथ नहीं गा सकता, 8 दिन साल में राधा कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता, राधा कृष्ण जी कोमल है ना, चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति भी ऐसी कोमल चाहिए, आर्ट भी उनका चाहिए, रसोई बनाने का, स्नान कराने का, सब भाव उनका चाहिए, ये गुरु को पहले प्रयोग करेगा। अब तक ही जो इन सब सेवाओं से दूर रहता है, वैष्णव का संग नहीं, कोई इससे मतलब नहीं, तो तब फिर उसको कैसे होगा, इसलिए वो मुक्ति का उपास है। ऐसे लोग मुक्ति के तरफ नहीं जाते, उनको साई की मुक्ति भी हो सकती है, और यदि किसी कृष्ण की उनकी कृपा हो जाए तो ना, तो सामित्य भी हो सकता है, सारूप्य भी हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। इसलिए यदि जिस चीज का वो उपासक है वात्सल्य का, तो जसोदा जैसे भाव लाना पड़ेगा, उनकी किन तरीके दास का है तो हनुमान जैसा, सखा का है तो सिद्धाम मधुमंगल सुबल इत्यादि की भावना, इस तरह से ये होता है। तो वही कह रहे हैं यहां श्री कृष्ण पदारविंद मकरंद लंपट कौन है, सबसे अधिक गोपियां हैं, इससे बढ़कर के ओ चरम सीमा तक और लोग हैं, किंतु यही सबसे अधिक चरम है। जब तक गोपी भाव नहीं आए, यही उद्धव जी इस श्लोक में बदला है, एक आवरम प्रभुतम संसार में इन समस्त विश्व में, यहां तक कि गो गोलोक ब्रज में थी तब और यहाँ गोपियों का जन्म धारण करना ही भूमि मने यहाँ पर सार्थक है। और सबका क्या है कि फल है। तो यहाँ पर उद्धव जी कह रहे हैं कि अहो इन गोपियां, ये गोपियां कहां और मैं कहां। मैं प्रश्न करने नहीं चाहता क्योंकि चरण की धूलि गोपियों के द्वारा हम अभिषिक्त नहीं हो सकते। मैं वेदाभ्यास नहीं करना चाहता। अरे गोपियों के कंठ और हृदय में ही वेद का सार मुक्त रस यहां पर वहां यहां और यहां पर उनका है। इस वेद में क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा अभी वो कर्मकांडी जैसे स्वाहा स्वाहा था यही होगा। या उपनिषद में चले जाएंगे तो हम ब्रह्मास्मि इत्यादि होगा। इसलिए कोई ब्रह्म जन्म नहीं, हमको ब्रह्म जन्म की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, शब्द ब्रह्म की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि गोविंद कथा वशस्य अर्थात गोविंद क्या वो पद हाँ पदारविंद महाविंद लंपट गोपी जन्म हमारा कहीं हो जाए या उनकी कथाओं में हमारा यदि रस हो जाए हमारा सब कुछ हो जाए। हम यही चाहते और कुछ कोई जन्म इत्यादि नहीं चाहते। और इतना समझ लेकर कि इस जगत में सबसे बढ़कर के जन्म सफल यदि किसी का है और आंखें किसी की यदि सफल है तो किसकी है, गोपी। और वही गोविंद पदारविंद मकरंद के सबसे अधिक योग्य अधिकारी है। इनकी कथा में यदि रुचि हो जाए तो हमको आशा है कि हमारी मनोरथ भी पूर्ण हो जाए। इसके बाद ही ये श्लोक है प्रेमा स्त्रियों चार दुष्टा कृष्णे परमात्मा भाव नमेश्वरों भरत अभिदिशो साक्षात श्रेयस्तम।